नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से खास एक विशेष प्रस्तुति फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा यह लाइव कार्यक्रम जिसका नाम है संपूर्ण योग। बात है 21 दिवसीय योगा चैलेंज की। क्या 21 डेज के लिए आप हमारे साथ हर दिन जुड़ सकते हैं, हर दिन एक एक योगासन सीखें और योग को पूर्ण रूप से समझें। सिर्फ फिजिकल योगा को ही नहीं, मगर योगा के साइंस को समझें, उसके बेनिफिट्स को समझें, उस बेनिफिट्स को लाइफ में अप्लाई करना सीखें और साथ साथ सीखें मेडिटेशन। तो आने वाले आधे पौने घंटे में दोस्तों, हम हर दिन की तरह आज 7वें दिन एक हफ्ते के सफर को पूरा कर रहे हैं। और अगर आज भी आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो घबराएं नहीं, 21 दिवसीय योगा चैलेंज में आप आगे बहुत कुछ सीखते जाएंगे। तो चलिए हमारे इस सफर की शुरुआत हम आज के दिन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय माउंट आबू से ये खास पेशकश है और आज है 7वां दिन 21 डे योगा चैलेंज का। अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए, अपने सवाल लिखिए, अपने फीडबैक्स लिखिए, जो कुछ कहना चाहते हैं लिखें। आपके कमेंट्स को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और जो आज के हमारे एक्सपर्ट होंगे, जो योगा के बारे में हमें बहुत ही सुंदर सा टॉक देंगे, उनसे योगा के बारे में आपके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। मगर वो सब कुछ होगा आगे। शुरुआत के इस मोड़ पे हम करेंगे योगासन यानी फिजिकल योगा को। कल हमने पद्मासन सीखा था, सुखासन सीखा था, आज एक नया आसन सीखते हैं। और योगासन सिखाने के लिए हमारे साथ हरीश वैद्य जी जो योगाचार्य हैं वो जुड़ रहे हैं सीधे बड़ौदा से। तो चलिए चलते हैं उनके पास और सिर्फ सीखते नहीं हैं, साथ साथ करते हैं योगासन। आप भी हो जाइए तैयार, अगर आपका योगा मैट है तो उस पे बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज का आसन। चलिए सीधे योगासन सीखने चलते हैं।
ओम शांति। ये आसन करने में बहुत आसान है। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो इससे आपका मनोबल प्रचंड बनना तय है। इसका नाम ही है वज्रासन। वज्र माना लोहा, लोहे जैसा मनोबल जिसका होता है, इतनी एकाग्रता होती है, इतना डिसीजन पावर होता है, इतनी जिद आ जाती है पॉजिटिव मामलों में, तो इसके लिए इसको वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन के साथ जुड़े दूसरे और भी आसन हम सीख लेंगे, आज हम वज्रासन सीख लेते हैं। चलिए आप जमीन पर बैठ जाइए, हमारी रितु बहन जैसी बैठी है, पैर लंबे कर दीजिए, दंडासन में बैठ जाइए, ये दंडासन है। दंडासन के बाद तुरंत एक होता है विश्रामासन, दोनों पैर ऐसे करके बिल्कुल ढीले ढाले होकर बैठना है, दोनों पैरों में अंतर, ये विश्रामासन। अगर आपको रीढ़ की हड्डियों को बिल्कुल सख्त करना है तो दंडासन में बैठना जरूरी है। अच्छा, अभी दंडासन में आ जाएंगी ऋतुबेन, बिल्कुल, फिर लेफ्ट पैर को इस तरफ से मोड़ेगी, नितंब के नीचे ले जाएंगी, राइट पैर को उस तरफ से नितंब के नीचे ले जाएंगी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगी, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगी। ये वज्रासन हो गया, बहुत आसान है करने में, लेकिन जिनको घुटने में दर्द है उनको तो नानी भी याद आ जाएगी, इसलिए घुटनों के दर्द वाले बिल्कुल ना करें। जिनको घुटने में स्वेलिंग है, जिनको आर्थराइटिस जिसको कहा जाता है, वे नहीं करें। जिनको यूरिक एसिड ज्यादा है वे नहीं करें। फिर जिनको एडी में दर्द रहता है वे लोग भी नहीं करेंगे। जिनको लोअर बैक में तकलीफ है वे लोग भी नहीं करेंगे, अन्यथा बाकी सब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी रखनी है, इससे बहुत प्रचंडता से आज्ञा चक्र शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि मूलाधार से जो शक्तियां ऊपर उठती है उसको वेग मिलता है, हमारा लीवर भी एक्टिवेट हो जाता है, मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है और जो केमिस्ट्री बनती है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहती है। और इसी वज्रासन से हम बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद भी हो सकता है, अकेला ऐसा आसन है, फिर सुखासन ऐसा आसन है जो भोजन के वक्त हो सकता है। खासकर स्वस्तिकासन में भी आप बैठे, थोड़ा टेबल लेना पड़ेगा आपको, भोजन कर सकते हो, लेकिन वो सब सिद्धियों के लिए कहे हुए आसन है। सुखासन और वज्रासन आप लंबे समय तक कर सकते हैं, इसकी जो मर्यादाएं मैंने बताई है वो भी ध्यान में रखना। स्त्रियां जब खास करके पीरियड्स में होती है तब वो ये आसन नहीं कर पाएंगी। ये इसके दोनों पैर थोड़े फैला करके जो आसन बनता है वो प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ जुड़ा दूसरा आसन है वो भी आज हम आपको बता देते हैं, वो है ब्रह्मचर्यासन। ब्रह्मचर्यासन में दोनों एड़ियां पीछे से साइड में हो जाएंगी और हमारा गुदास्थान जो है वो जमीन से चिपक जाएगा। जो लोग ब्रह्मचारी है, जैसे बहन ने बताया है, एक बार यहां पलट के भी आपको बता देंगी रितु बहन। बिल्कुल, एक पैर इधर एक पैर उधर, नितंब का जो स्थान है वो जमीन से चिपकेगा और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेंगी, आज्ञा चक्र बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहेगा, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, जंघाओं पर रहेंगे और इसमें भी आप लंबा समय निकाल सकते हो। ये जो है वो हमारे बीज शक्तियों की गति ऊर्ध्वगामित करता है, हमारी जो सारी शक्तियां हैं, हमारी जो सप्त धातु में से मेन धातु है वो ऊपर की ओर उठती है, आज्ञा चक्र पर आती है, शास्त्रार्थ पर आती है और इसके कारण हमारे चेहरे पर दूसरों के मुकाबले बहुत चमक आ जाती है और हमारा चेहरा दीप्तमान हो उठता है, चमक वाला चेहरा हो जाता है और हम दूसरों से थोड़ा अलग लगने लगते हैं क्योंकि हमारी बीज शक्तियां ऊपर उठती है, सारी दिव्य शक्तियां ऊपर उठना शुरू हो जाता है और हम योगी भी हो जाते हैं। फिर ये आप अनुभव करके देखो, मैंने बोला है इसलिए मान मत लेना, ये इजी है। आप मूल स्थान में वापिस आ जाइए और कैमरा के सामने आ जाइए आप। तो ये दोनों आसन आज हमने आपको बताए हैं, इसका होमवर्क आपको करना है और ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में आपको जानना, इसका अभ्यास करना ताकि आप योगी जीवन अच्छी तरह से जी पाओगे। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये आसन अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, प्रोग्राम के लिए कोई कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी हैं और ये पूरा महीना हमने आसन एंजॉय किए हैं सबने, आप इसको रोज बरोज करते रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान शिव का साथ आपके साथ रहे सदा, ये खास दिल से मैं बोल रहा हूं और इस पूरे संवाद का श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूं और प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी भारत माता को प्रणाम करके आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूं। अस्तु, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का और साथ में ऋतु जी जुड़े थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आसन करना सिखाया। और जैसे वज्रासन हम सभी कर सकते हैं, भोजन के बाद भी करने वाला आसन है और इनफैक्ट कहा जाता है अगर किसी को बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं किसी दिन तो वज्रासन में बैठ जाना चाहिए 5 मिनट, तो फिर वो डाइजेस्टिव प्रक्रिया को और अच्छे से कर देता है। दोस्तों, ये तो कॉमन विजडम है, ये ऐसा ज्ञान है जो हम सबको सदियों से मिलता आया है और इसे हम कॉमन यूजेज में ले आते हैं। और आजकल हम जब भी हमको कुछ हैवीनेस फील होता है तो हम तुरंत कोई इनो या फिर कोई सोडा पीने पे चले जाते हैं, मगर ये आसन करने से घर बैठे इन चीजों का निदान किया जा सकता है और ये सब कुछ सिखाया जाता है। और योगासन में आज हमने वज्रासन सीखा है, ब्रह्मचर्य आसन सीखा है, इसका प्रैक्टिस आपने भी किया होगा, कल सुबह भी कीजिएगा, दिन भर में जब आप योगा के लिए समय निकालते हैं तो सुबह शाम इसे करना ना भूलें। तो ये थे आज के दो आसन जो हमने सीखे, फिर कल एक नए आसन के साथ हम वापस जुड़ेंगे, मगर आज अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम के अगले हिस्से का यानी कि बोध का। पतंजलि जब योग के बारे में बताते हैं तो मुनि पतंजलि ने योग के अष्ट अंग बताए हैं, उसमें से पहला अंग था यम, दूसरा है नियम और नियम में से कल हमने स्वाध्याय के बारे में सुना, यानी स्वयं का अध्ययन करना योग के लिए बहुत आवश्यक है, तभी योग सक्सेसफुल हो सकता है, इस कंप्लीट साइंस को हम समझ सकते हैं। आइए आज दूसरे नियम के बारे में जानते हैं और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपीय देशों की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सुदेश दीदी जी जुड़े हैं और हाल फिलहाल वो लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूलतः वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में ब्रह्मा कुमारीज की सेवा केंद्रों की निदेशिका के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। आइए सीधे चलते हैं लंदन और दीदी जी के साथ जानते हैं आज के दूसरे नियम के बारे में। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका।
नमस्कार।
आज बोध के दूसरे विषय पर हम दूसरे नियम को समझेंगे। संतोष आज का विषय है और इस बोध के पश्चात हमारे कुछ दोस्त अगर चाहें तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखना न भूलें, हम दीदी जी से आपके प्रश्नों का उत्तर भी लेने का प्रयास करेंगे। अगर मैं दीदी जी से अनुरोध करता हूँ, दीदी आज के विषय संतोष पर आप अपनी बात हम सब
अपनी बात हम के सामने साथियों के सामने रखें।
जीवन को सदा सुखी रखने का साधन अथवा विशेष गुण संतोष है। कहा जाता है गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। किसी के पास हाथी हैं, घोड़े हैं, गौवे हैं, धन रत्नों की खान है, ये सब होते हुए भी इंसान परेशान है, असंतुष्ट है। चाहिए और चाहिए, चाहिए चाहिए। और कहा जाता है कि इंसान की आशाएं कभी पूरी नहीं होती। जीवन पूरा हो जाता है पर आशाएं पूरी नहीं होती। चाहे कितना भी कोई पुरुषार्थ करे, जब तक संतोष नहीं, जीवन की संतुष्टि नहीं, खुशी नहीं। और संतोष क्या है, क्या मतलब है? इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेंटमेंट। कौन से कॉन्टेंट से आत्मा के अंदर संतुष्टता, संतुष्टता, हृदय की जो भी चाहना है वो पुष्टि हो जाती है, तुष्टि हो जाती है स्वयं की, उसका नाम है संतोष। आजकल संतोषी देवी की पूजा बहुत होती है। क्यों? संतोषी माँ के लिए इसलिए धारणा करते हैं कि वो जीवन के एक नियम का पालन नहीं किया। और वो जीवन का नियम है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, इच्छाएं ईर्ष्या पैदा करती हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन। जो चाहिए वो तो ठीक है, एक है आवश्यकता अनुसार जो चाहिए सो लेना, परिस्थिति अनुसार जैसा है उसको उस अनुसार सेट करना, ये फर्क है। और जो मिला हुआ है, जो हमारे पास प्राप्त है, उसकी एप्रिसिएशन, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए वह मेरा भाग्य, इस प्रकार की भावना रखने से इंसान के पास स्वतः ही संतुष्टि रहती है। मनुष्यात्माएं संतुष्ट नहीं है, जब तक संतुष्टता नहीं है तब तक सुख नहीं है, और सुख के लिए साधन अपनाना चाहते हैं, परंतु बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना त्याग के, बिना योग साधना के संपूर्ण सुख नहीं है। सुख के साधन एक जुटाते हैं तो दूसरा बढ़ता है। हमेशा कहा जाता है कि किसी के पास सिर्फ साइकिल है तो उसकी असंतुष्ट नहीं है, वो दूसरा देखता है कि दूसरे के पास तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है तो देखता रहे दूसरे के पास तो कार है, कार है तो समझता है मेरे पास तो मॉडल अच्छा नहीं है, दूसरे के पास, इसको कहेंगे कंपैरिजन। वो तुलना करते करते अपने बैलेंस का, अपने संतुलन को खो देता है, और जब संतुलन नहीं रहता है तो उस निर्णय शक्ति भी ठीक नहीं रहती, संतुष्टता का भी अनुभव नहीं होता है। इसीलिए कंपैरिजन, कंपैरिजन किया, कंपटीशन करना शुरू किया, कंपटीशन शुरू किया तो जो अपने मन की भावना कंपैरिजन से इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, कंपटीशन से अपनी धैर्यता अपनी गंभीरता, वास्तव में उसको रीस कहा जाता है, कंपटीशन में नहीं कर रहे परंतु रीस कर रहे हैं मुझे भी ऐसा होना चाहिए, तो अंदर का रस समाप्त हो जाता है। अवस्था एक रस नहीं रह सकती है, आनंद में नहीं रह सकती है। इसीलिए उसमें क्या चाहिए, लोभ वृत्ति जो है ना, क्या हो रहा है, संतोष नहीं है, कारण लोभ वृत्ति, चित्त में चिंतन दूसरों का, कंपैरिजन से चिंता लग जाएगी, इसीलिए चित्त वृत्ति को सतो प्रधान बनाना है, वृत्ति को शुद्ध बनाना है। तो संतोष का मतलब यह है कि हमारे अंदर लोभ की वृत्ति ना रहे, लोभ वृत्ति से भ्रष्टाचार बढ़ता है, लोभ वृत्ति से पाप कर्म बढ़ता है, उससे क्या होता है कि गरीबी और आती है। चाहते हैं हम सुखी होवें परंतु बढ़ता है भ्रष्टाचार और अनाचार पापाचार, कर्म भी ऐसे होते हैं। इसीलिए कर्मों के फल अनुसार मनुष्यात्माएं उल्टे कर्म करती हैं और संतुष्टता चाहती है। तो कहा जाता है बोए बीज बबूल का आम कहां से खाए, चाहता है मीठा आम का फल खाना, बोरा है कांटा तो जंगल ही उगलेगा ना, कांटे को ही के भी कोई सींचता रहेगा तो नेचुरली झाड़ जो है वो मधुरता का फल नहीं होगा, असंतुष्टता का फल होगा। परंतु जब आत्मिक स्मृति है, मेरे पास सब कुछ है, क्यों कि आत्मा चैतन्य बीज है, और आत्मा में जो शक्ति अथवा धन है, कंटेंटमेंट, आत्मा की जो पूंजी है वो ज्ञान, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा जरूर, समय से पहले नहीं मिलेगा, जितना डिजर्व करते हैं उतना मिलेगा, वो रिजर्व किया हुआ है, वो जैसे बैंक में जमा है ईश्वरीय बैंक में, पर समय पर मिलेगा। तो जैसे खेती होती है, बीज में पावर है, ताकत है, परंतु समय पर वो फल देता है, इसे धैर्यता चाहिए। तो जब आत्मज्ञान है, कंटेंटमेंट में पहले ज्ञान शक्ति चाहिए, जब ज्ञान है तो नेचुरली धैर्यता है, और धैर्यता और गंभीरता के जल से उसको सींच रहे हैं तो शांति है। शांति है तो प्रेम है, प्रेम है साथ में आनंद है, सुख है, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद है। क्यों? कि उसके पास इंद्रियों के सुख की आश नहीं। संतुष्ट व्यक्ति वो है जिसके अंदर साधना है, सादगी है, स्वच्छता है। उसके पास नेचुरली क्लियर है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है। तो आत्मिक शक्तियां जो हैं, वो परमात्म देन है। मनुष्यात्माओं से प्राप्त होने वाली बातें विरोध विरोधी बन जाते हैं मन के शांति सुख के लिए। तो सुख चाहिए तो इंद्रियों के सुख के कारण मनुष्यात्माएं अपने संतोष को खो देती हैं। संतोष सुंदर गहना है। संतोष संतुष्टता हमारा श्रृंगार है। संतुष्टता हमारे आनंद की सीट है, सुख का साधन है। तो इसीलिए जब आत्मिक सुख आने लगता है, परमपिता परमात्मा सुखदाता से संबंध जुट जाता है, तो आत्मा को अतीन्द्र सुख का अनुभव होता है। वो अतीन्द्र सुख में हर प्रकार का खजाना है, क्योंकि आत्मा अतीन्द्र सुख के झूले में जब झूलने लग जाती है तो हलचल में नहीं आती है, एकदम हर प्रकार की परिस्थिति में स्वस्थिति बना के रखती है। तो उसको जो मिला हुआ है उसका सदुपयोग करते हैं। संतुष्ट व्यक्ति सदुपयोग करना जानता है। मितवायता होती है, व्यय, फालतू व्यय करना नहीं जानता। इकोनॉमी होती है, एक के नाम से, जो दाता ने दिया, जो मेरे भाग्य ने दिया, जो मेरे श्रेष्ठ कर्म ने दिया, उसका उसको स्वमान रहता है। वो मन का मांगता नहीं होता है, वो दाता होता है। संतुष्ट आत्मा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाती है, संतुष्ट आत्मा दूसरे को देती है। थोड़े में स्वयं को संतुष्ट समझती है, दूसरे के लिए शाहदिल होती है, क्योंकि दाता है। इसलिए संतोषी माता देवी के नाम से भी गाई जाती है। जब संतुष्टता है तो मैं लोभ की वृत्ति नहीं, तो लोभ की वृत्ति नहीं है तो यही रहता है कि हर एक आत्मा को मिले। तो न केवल स्वयं से हम संतुष्ट रहते हैं, जो हम कर्म करते हैं वो तो स्वयं से संतुष्ट नहीं, खाली अपने से भी संतुष्टता होती है और दूसरी आत्माओं के व्यवहार से भी संतुष्टता होती है। जिसमें असंतुष्टता का संस्कार है वो सदा कंप्लेंट करता रहेगा, ना केवल कंपटीशन और कॉपी करेगा, कंप्लेंट करता रहेगा। तो उनका स्वभाव संस्कार कर्कश हो जाता है, क्रोध आना शुरू हो जाता है, रिएक्शन होता है। तो ना केवल लोभ की वृत्ति परंतु क्रोध की वृत्ति, और क्रोध की वृत्ति जब आती है तो वायलेंस शुरू हो जाती है। धैर्यता शांति प्रेम समाप्त, ये धन समाप्त हो जाता है। इसीलिए संतुष्ट जो है वो सब गुणों का राजा है, उसमें रॉयल्टी है। और जो भूखा है, लोभी है, उसका पेट भरा हुआ है पर आंखें भूखी है। वो देखता है दूसरे के पास, जो देखता ना समझता मेरे पास नहीं है। वो अपने अंदर के खजाने को नहीं देखता है, बाहर के खजाने को देखता है। इसलिए बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी वाले को सदा हर प्रकार के खजानों की ये चाबी है, ये की है संतुष्टता के खजाने की। बाकी कितना भी धन है, हाथी है, परिवार है, संसार है, वैभव है, वस्तुएं है, थोड़ी सी परिस्थिति आई हलचल हो जमे आ जाएगा। परंतु जिसको परमात्मा के साथ संबंध है और ये ज्ञान है कि मैंने श्रेष्ठ कर्म का फल किया हुआ है, श्रेष्ठ कर्म का फल समय पर मिलना है जरूर, इसलिए दूसरे के व्यवहार से भी असंतुष्ट नहीं होता। साक्षी होके देखता है, ये तो ड्रामा खेल रहा है, ये भी आत्मा जो है अपने पार्ट से। तो उसको वो इस बेहद के नाटक में अटकता नहीं है, दूसरे के स्वभाव स्वभाव से, संस्कार से परेशान नहीं होता है, जैसी परिस्थिति है, जैसा व्यक्ति है, जैसा किसका संस्कार है, उसको स्वीकार करता है, क्योंकि स्वमान की सीट पर साक्षी होकर अपने आप को देखता है, साक्षी दृष्ट है। संतोषी आत्मा सीन को बड़ी साक्षी दृष्टा से देखती है, धैर्यता से देखती है, समय से पहले नहीं, समय पर सब कुछ फल देता है। मैं बीज को असंतुष्टता के कारण, असंतुष्टता है तो अधीरता है, अधीरता है तो वो जैसे अभी बीज उग भी नहीं रहा, उगने से पहले ही वो छोटे बच्चे की तरह उखाड़ के देखता है, अनजान अज्ञानता के कारण या भोलेपन के कारण भी वो पेड़ को खोल के फिर से देखता है कि उग रहा है कि नहीं। अधीरता नहीं, संतुष्टता में धैर्यता है, गंभीरता है, रॉयल्टी है, दातापन है। तो वो स्वयं से भी संतुष्ट है, दूसरों से भी संतुष्ट है और परमपिता परमात्मा से भी सदा संतुष्ट है। परमात्मा को भी उलाना नहीं देता कि तुमने मुझे मदद क्यों नहीं की। सिर्फ धन की संतुष्टता की बात नहीं है, मान चाहिए, पोजीशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, निर्णय शक्ति नहीं है तो सब जो नहीं चाहिए, जो नहीं मेरा है उसको मांगने के लिए असंतुष्टता आ जाती है। अथवा अहंकारवश असंतुष्ट व्यक्ति क्रिटिसिज्म करेगा, कमेंट करेगा, करेक्शन करेगा, अहंकार की भावना जागृत हो जाएगी। तो शुरू तो लोभ के बीज से होता है, असंतुष्टता के बीज से शुरू होता है, अनेक प्रकार का जंगल पैदा हो जाता है। इसलिए संतोषी मनुष्य महल में रहता है, सुख के आनंद के उस संतुष्टता के महल में आनंद का झूला झूलता है, आनंद के सागर की लहरों में लहराता है और अतीन्द्र सुख का झूला झूलता है। इसलिए सदा संतुष्ट रहने की सर्टिफिकेट लेना है जीवन में, अपने आप से भी संतुष्ट, दूसरों से भी संतुष्ट और सबसे बड़ी बात मेरे से सभी संतुष्ट हों। और वो तब होगा जब मैं जो मेरे पास परमात्मा से मिली हुई शक्तियां हैं उसको मैं असंतुष्टता से भाग्य का की महिमा करते हुए फिर श्रेष्ठ कर्म करता रहूं तो फल तो जरूर मिलना ही है, पर धैर्य का फल मीठा होता है। ओम शांति। समय की सीमा को देखते समाप्त करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। और आपने जो और आज संतुष्टता के बारे में बताया उससे पता चलता है कि जीवन में संतुष्ट रहना कितना आवश्यक है। जो हमारे पास है अगर उन चीजों के लिए हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो फिर सारी चीजों को हम अप्रिशिएट करने लगते हैं, सारी चीजों में हम खूबसूरती देखने लगते हैं। मुझे एक ग्रैटिट्यूड की भावना मेरे अंदर आती है कि भाई भगवान ने मुझे कितना दिया है, मेरी जिंदगी ने मुझे कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। जब आप ये बात कह रहे थे तो हमारे कुछ दोस्त हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में लोगों ने प्रश्न भी डाले हैं। एक प्रश्न ये है कि मुझे पता चला है कि मैं संतुष्ट नहीं रहता, हर बार मुझे कुछ ज्यादा चाहिए ज्यादा चाहिए ऐसा लगता रहता है। ऐसे समय पर मैं अपने आप को, जब वो ख्याल आए कि मुझे ज्यादा चाहिए, उस समय पर मैं अपने आप को क्या कहूं, क्या बात अपने आप को समझाऊं, ये बात पूछ रहे हैं।
अपने आप को समझाना है। प्रश्न को एक बारी फिर से पूछें अगर मैंने राइट प्रश्न पूछ समझा है।
जी प्रश्न है दीदी कि मैं अपने आप को कैसे समझाऊं कि मुझे संतुष्ट रहना है।
है तो कैसे समझाना है कि मेरे पास किस चीज की कमी है। ये पहले अपने आप को देखे कि जो मेरे पास जो मुझे चाहिए जिस समय जितना चाहिए उतना मेरे पास है। तो अगर उतना मेरे पास है और उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूं, उसको मैं महत्व दे रहा हूं, जो मेरे पास है मैं उसको वैल्यू नहीं दे रहा हूं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, और जो नहीं है या दूसरे के पास है वो मैं लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो लक्ष्मी क्यों आएगी? न धन आएगा, न मान आएगा, न पोजीशन आएगी, न कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। जो मेरे पास है मैं उसकी वैल्यू रखूं, उसको मैं उसका महत्व समझूं, उसको मैं रेस्पेक्ट दूं, तो वो उस रेस्पेक्ट से ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी पहले वेस्ट नहीं होगी। अपने आप को ये समझाना है कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लापरवाह होना है और मुझे लेजी होकर के बैठ जाना है। संतुष्टता का मतलब लेजीनेस नहीं है, संतुष्टता का मतलब केयरलेसनेस भी नहीं है, संतुष्टता का मतलब ये है कि हमारे पास जो मिला हुआ है उसको मैं बड़े प्रेम से, मान से, सम्मान से, आनंद से यूज कर रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी उसकी जो एनर्जीज हैं वो मेरे पास आती रहेंगी। इसलिए ये बीज है संतुष्टता, इसको मुझे सींचते रहना है, और जितना जितना मैं सींचूंगा समय पर मुझे फल मिलेगा जरूर। कंपैरिजन नहीं करना है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, मैं अनलक्की हूं। तो पहले तो ये गाना शुरू करो, सीख लो, आई एम लक्की, आई एम हैप्पी, आई एम लक्की, आई एम हैप्पी, आई एम लक्की, आई एम हैप्पी। मेरा लक कैसा है, तो मैं अपने लक को भी कोस रहा हूँ, तो अपनी हैप्पीनेस को भी गंवा रहा हूँ, क्योंकि संतुष्टता तो हैप्पीनेस के लिए चाहिए ना, खुश हो गए तो संतुष्ट हो गए। अच्छा, तो इसीलिए जो है उसको महिमा करते रहे, और फिर मेरा भाग्य बड़ा ऊंचा है, सिर्फ मैं अपना संबंध भगवान से बना के रखूं। भगवान भाग्य विधाता है, तो इसीलिए मेरा संबंध जितना उसके साथ मेरी एनर्जी कनेक्टेड होगी उतनी मेरे को पावर मिलती रहेगी। इसलिए मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है, भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि मैं भगवान की संतान हूं। यहाँ पर इतना ये है, समय समय पर सब कुछ मिलता है। पेड़ बताया ना कि बीज में सब फल है, सींचते रहना है। ऐसे नहीं कि अच्छा मैं संतुष्ट हूँ, बीज तो मेरे पास है, फल आप पे निकल आएगा, नहीं। उशारत करने के बाद फिर उसके बाद उसको देखते देखना है कि मुझे वो किस प्रकार से एक्ट करनी है, कनेक्ट उस एनर्जी से किस प्रकार से करना है। चिंता से नहीं, परेशानी से नहीं, कंपटीशन से नहीं, कंपैरिजन से नहीं, अधैर्यता से नहीं। धैर्यता और संतोष ये दो फ्रेंड्स हैं आपस में, इसलिए ये दोनों साथ हैं तो संतुष्टता है।
थैंक यू दीदी। एक और प्रश्न ये कि अगर हम संतुष्ट हो जाएं, अगर हम कंटेंट हो जाएं जो कुछ भी हमारे लाइफ में है उसके साथ, अगर हम खुश हो जाएं कि भाई चलो जो मिला है वो अच्छा है, तो हम आगे के लिए प्रोग्रेस कैसे करें? संतुष्ट रहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आगे प्रोग्रेस किए बिना रह जाएं?
तब ये यही कहने, आगे की प्रोग्रेस करनी है, क्योंकि जब मेरे पास संतुष्ट है तो एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही हूं। एम लक्ष्य रख, अच्छा क्या है, डिजायर और एम में फर्क है। संतुष्टता क्या है, अननेसेसरी, असंतुष्टता क्या कब आती है, जब अननेसेसरी डिजायर्स हम क्रिएट करते हैं, जरूरत के पहले डिजायर्स क्रिएट करते हैं। परंतु एम है, इच्छा और एम में फर्क है। डिजायर डिजीज हो जाती है और एम जो है वो एक्टिव बनाता है। तो एम है कि मुझे अपने आप को डिवाइन बनाना है, एलिवेटेड बनाना है, अच्छा जॉब लेना है, अच्छी एजुकेशन रखनी है, अच्छी पोजीशन बनानी है, पर कंपटीशन से नहीं, उसको अपने आप में इन्वोक करना है। परंतु किसी प्रकार से किसी और से नहीं लेना है, अपने से लेना है, परमात्मा से लेना है। इसीलिए पुरुषार्थ तो पहला स्टेप है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं मिलती। तो संतोष क्या है, यानी प्रारब्ध है परंतु मैं क्रिएट भी कर रहा हूँ। मेरा प्रेजेंट जो है वो मेरा पास्ट का रिजल्ट है, और अभी मेरा जो फ्यूचर है वो मेरा प्रेजेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं तो संतुष्ट होके बैठ गया, नहीं, बढ़ाना है परंतु विधि से बढ़ाना है। विधि से सिद्धि होती है। मेरे को खेती मिली, एक बारी मैंने खेती कर ली, अब एक बारी खेती कर ली और मैंने बीज सारे खा लिए और उसमें से जरा भी नहीं रखा जो मैं अगले बारी बनाऊं, तो है नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ। मेरे पास तो अभी 5 साल का अनाज आ गया, बस अभी अगले साल खेती नहीं करनी है। नहीं, अगले साल की खेती में से प्रेजेंट की खाती के बी खेती के जो बीज हैं या पास्ट की खेती के जो बीज हैं वो मुझे बोने हैं। इसीलिए विधि से सिद्धि होती है। तो असंतुष्टता का मतलब ये नहीं कि हाथ पर जोड़ के बैठ जाओ बस अभी मैं तो संतुष्ट हूँ, नहीं नहीं, ये तो कंपटीशन, कंपैरिजन, लोभ, भ्रष्टाचार, ये न बढ़े। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, दूसरी शक्ति को भी बढ़ाना है, पर लोभ की वृत्ति को खत्म करना है। इसलिए ये जो पतंजलि योग साधना का मतलब ये है कि विकारों की वृत्ति को खत्म करना है, बेकार की इच्छा को खत्म करना है, बाकी श्रेष्ठ को तो सामने बढ़ाते ही रहना है, और वो बढ़ेगी तो दान करते रहेंगे, दूसरों को भी देते रहेंगे। लोभ वृत्ति वाला शेयर नहीं करता, और लोभ वृत्ति वाले के पास क्या होता है, विशेष करके वो धन अपने पास कभी हमेशा कम समझता है। दूसरा बड़ा शाहूकार है, वो बड़ा शाहूकार है, और मेरे पास, इसके पास अक्कल तो है ही नहीं, वो दूसरे की अक्कल को कम देखता है, अक्कल को समझता है वो बेअक्कल है, मैं अक्कल वाला हूँ, और धन से समझता है बड़ा धनवान है। इसीलिए उसके पास अपनी संतुष्टता नहीं है जो उसके पास है। इसलिए ये देखना है, लोभ हमारी वृत्ति को, हमारी दृष्टि को, हमारे व्यवहार को, संस्कार को गिरावट में ले आता है, इसलिए गरीब बन जाते हैं। इसलिए धनवान है हम, बलवान है हम, पुरुषार्थी में पुरुषार्थ श्रेष्ठ करने वाले हैं, तो लक्ष्य सामने रखेंगे तो लक्ष्मी बन जाएंगे। लक्षण अपने जीवन में धैर्यता, संपूर्णता, गंभीरता कर लाएंगे तो नारायण बन जाएंगे। तो नर से नारायण बनना है तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास तन मन धन जन संपत्ति साधन वैभव अस्तु सब प्रकार है, सब कुछ है। इसलिए लक्ष्य अच्छा रखना है, ऐसा नहीं कि हम तो बस अभी संतुष्ट हो गए और कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्य ऊंचा चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए हमारे दोस्तों के प्रश्न के उत्तर दिए, और आज संतोष पर एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य सुनने को मिला, और हमारे जीवन को संतुष्ट बनाने के लिए संतोष का गुण कितना आवश्यक है ये जानने को मिला। आज आप सीधे हमारे साथ लंदन से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे दीदी, नमस्कार।
ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों जो चलने के साधन है, स्वयं प्रसन्न चित्त जो है वो सदा संतुष्ट, संतुष्ट प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न चित्त जो है वो श्रेष्ठता से कार्य करता है, इसलिए फिर संतुष्ट है।
थैंक यू दीदी, नमस्कार। दोस्तों, ये थे ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, जो लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले 70 वर्षों से आध्यात्मिक साधना को करते हुए और 60 वर्ष से अधिक समय तक इस ईश्वरीय ज्ञान को, भारत के अध्यात्म को देश विदेशों में फैलाने की अनवरत सेवाएं कर रहे हैं। कल फिर हम उनसे जुड़ेंगे और कुछ और बोध की बातें और प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। अगले 5 मिनट के लिए हम करेंगे मेडिटेशन, यानी राजयोग की साधना। ध्यान योग का एक अभिन्न अंग है और आखिर मन को जोड़ने का नाम ही तो योग है। तो आइए अब अपने मन को जोड़ते हैं, अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं और संपूर्ण योग के इस आखिरी हिस्से को यानी राजयोग को हम सभी मिलकर करते हैं। अगर आप पहले दिन जुड़ रहे हैं तो भी आप घबराइए नहीं, हम सब मिलकर इस मेडिटेशन को कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। और हमारे साथ मेडिटेशन कराने के लिए राजयोगी रितु दीदी जी हैं। चलिए चलते हैं उनके साथ और करते हैं राजयोग मेडिटेशन।
ओम शांति। संतुष्ट। ओम शांति। संतुष्टता ये एक ऐसा गुण है जिससे हम जीवन में सुख और शांति को अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। तो चलिए चलते हैं एक अंतर जगत की यात्रा में जहां हम स्वयं को संतुष्टता से भरपूर करते हैं। ओम शांति। देखें अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को। क्या उन परिस्थितियों को देख मन में क्यों क्या के प्रश्न आते हैं? ये प्रश्न हमें कभी प्रसन्न चित्त होने नहीं देंगे। तो आज जीवन की हर परिस्थिति को देख मन में ये संकल्प करते हैं कि मैं उन सभी परिस्थितियों को संपूर्ण रीति स्वीकार करती हूँ। जो वर्तमान में मेरे जीवन की वास्तविकताएं हैं उन्हें स्वीकार करने में ही समझदारी है। तो मैं आत्मा जीवन की हर परिस्थिति को संपूर्ण रीति स्वीकार करती हूँ। और क्यों क्या के प्रश्नों से परे होकर संतुष्ट मणि बन संतुष्टता के गुण को अनुभव कर पा रही हूँ। अब देखें हमारे जीवन में जो संबंध उन्हें देखकर ये ऐसे क्यों नहीं ये प्रश्न तो नहीं आते। आज हम अपने से संकल्प करते हैं वो जो हैं जैसे हैं हम उन्हें संपूर्ण रीति स्वीकार करते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें चाहिए या और कोई अपेक्षा नहीं रहती है। हम बहुत सहज, औरों के प्रति संतुष्टता को अनुभव कर पाते हैं। महसूस करें आपकी संतुष्टता उन्हें भी संतुष्ट मणि बना रही है। देखें अपने घर का वातावरण जहां सभी बहुत संतुष्ट हैं। संबंधों में उस मधुरता को महसूस करें। जिन संबंधों का आधार अपेक्षाएं नहीं लेकिन स्वीकार करना है। महसूस करें संतुष्टता के गुण को स्वयं में समाहित होते। और आज हमने परिस्थितियों को और लोगों को तो स्वीकार किया लेकिन क्या हमने अपने को संपूर्ण रीति स्वीकार किया? मैं जो हूं जैसी हूं मैं स्वयं को भी संपूर्ण रीति स्वीकार करती हूं। जब मैं स्वीकार करती हूं तो मन में इस संतुष्टता के गुण को संपूर्ण रीति अनुभव कर पा रही हूं। और इस स्थिति में स्वयं को इतना शक्तिशाली महसूस करती हूं कि मैं स्वयं को परिवर्तन करने के योग्य महसूस करती हूं। अब तक हमने जो किया जैसे किया उसे संपूर्ण रीति स्वीकार करना और आगे अच्छे से अच्छा कर पाना। ये स्थिति हम संतुष्टता के आधार पर बना सकते हैं। महसूस करें जब आप स्वयं को संपूर्ण रीति स्वीकार करते हैं तो मन सुख शांति से संपन्न होते जा रहा है। देखें ये गुण आप में पूरी तरह से समाहित हो चुका है और आपके जीवन के हर संकल्प का आधार बन चुका है। ओम शांति।
इस खूबसूरत से। बहुत बहुत धन्यवाद रितु दीदी जी का इस खूबसूरत मेडिटेशन के लिए, और उन्होंने बहुत ही सुंदरता से हम सबको संतुष्टता के एक्सपीरियंस में ले गए, ताकि हम सभी कंटेंट बन सकें, हम अपने गिफ्ट्स को देखें, क्या चीजें हमारे आसपास हैं, हमारे लाइफ में जो चीजें हैं उसे सेलिब्रेट करने के बारे में ये मेडिटेशन सिखाया। हम दिन भर में कभी भी इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये मेडिटेशन पसंद आया होगा। पूरे कार्यक्रम को अगर आपने पसंद किया है, अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। फेसबुक पर या यूट्यूब पर जहां पर भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं उसे लिखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। और कल हमारे साथ योगा चैलेंज के इस 21 दिवसीय सफर का 8वां दिन होगा, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ये ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से विशेष लाइव प्रस्तुति फेसबुक और यूट्यूब पर थी और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर थी। तो कल फिर हमारे साथ मिलिए और मिलकर करते हैं 21 दिवसीय योगा चैलेंज और सीखते हैं संपूर्ण योग को। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए बेहतर ख्याल, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।